ओम शांति, ओम शांति। इस परिसर में जहां कहीं भी आवाज जा रही है, कृपया सभी डायमंड हॉल में आकर स्थान ग्रहण करें। आज हमारे बीच बाबा के विशेष नूर रतन डॉक्टर सविता दीदी जी पधारे हैं। एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। डॉक्टर सविता दीदी जी बहुत ही सरल, अपनी सरलता, सादगी, सहनशीलता, संतुष्टता के लिए जानी जाती है। यज्ञ में आपका विशेष स्थान बना। आप बाल्यकाल में ही आध्यात्मिकता के प्रति रुचि थी, इसलिए बचपन में ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते ही 1974 में आपने ये शिक्षाएं जीवन में धारण की। आपका परिवार भी इसमें सहयोगी रहा और ज्ञान में चलते रहे। 1989 में आपने अपना जीवन समर्पित किया। 1990 में आप पांडव भवन में डिस्पेंसरी में, बाबा डिस्पेंसरी में आप अपनी सेवाएं देते थे, और 91 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च फाउंडेशन, अपना ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने सेवाएं देनी शुरू की सन 2000 तक एज मेडिकल ऑफिसर, और 2000 से लेके 2007 तक हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग आप एक व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में रहीं। तो यज्ञ के आदि रत्नों के दिल में भी आप विशेष दिल तख्त नशीन बनकर रही, और उसके पश्चात भी आप यहाँ मानसरोवर की सारी सेवाएं संभालती हैं। यहाँ के सारे कार्यक्रम आबू और मानसरोवर के, उन्हें बनाने और कार्यक्रमों को संचालित करने में आपका विशेष योगदान रहता है। आपने देश भर में मेडिकल और महिला विंग के बहुत सारे कैंपेन्स में एक का सफल संचालन किया, और देश विदेशों में आपने राजयोग और एक सफल जीवन शैली का प्रचार प्रसार किया। बहुत देशों में जाकर आपने इन पर अपने वक्तव्य दिए, क्योंकि कहते हैं जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, इसे जबरदस्त तरीके से जिए। तो ऐसा सफल संदेश आप सबको देते रहे। आज हम सब ब्राह्मणों के बीच आप निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी अपने जीवन के अनुभव से वो आप हमें बताएंगे। तो अभी हम सुनेंगे डॉक्टर सविता दीदी जी को।
ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को बाबा याद के महत्व को बताते हैं, और जितना हम याद में रहेंगे, भले ही हम योगी हैं और राज योगी हैं, तो बाबा कहते हैं आप कोई वो हठ योगी वाले योगी नहीं हो, लेकिन ये सहज याद है बाबा की सर्व संबंधों से स्नेह भरी याद हम बाबा को करते हैं। और बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, उतना ही आत्मा पावन बनेगी, उतना ही याद से शक्ति भरेगी, उतना ही बाबा के प्यार का अनुभव हमें होगा, बाबा के साथ का हमें अनुभव होगा, और हमारे जीवन में गुणों की धारणा भी होगी। तो याद से हमें कितने फायदे हैं, और ये समय है जो संगम युग का समय है, सबसे बड़ी बात कि 5000 साल के बाद बाबा हमें मिले हैं, तो कोई इतने समय के बाद मिलता है हमें, जिससे हम बहुत स्नेह करते हैं, तो फिर कैसी याद होती है? जो बहुत स्नेह करते हैं जिससे, उसकी याद कैसी होती है? ऐसी याद होती है कि भूलें कैसे, याद करें ये प्रश्न नहीं है, है ना। यहाँ तो हम कहते हैं योग कैसे लगाए, योग लगता नहीं, बुद्धि इधर उधर चली जाती है। एक तो ये स्थिति है जिसको बाबा युद्ध की स्थिति कहता है, युद्ध करते हैं फिर योग लगता है। और एक स्थिति ये है कि इतना स्नेह है बाबा से कि याद भूलती ही नहीं। दुनिया में भी ऐसे होता है कि किसी से बहुत स्नेह हो गया, जिसको लगाव का रूप कहते हैं ना। एक सच्चा स्नेह है, वो मोह वाला स्नेह नहीं होता, लेकिन जो मोह वाला लगाव वाला होता है प्यार, उसमें फिर भूलें कैसे। और इसीलिए कई बार जब लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं तो पागलपन जैसे उनकी स्थिति हो जाती है, देखते हैं ना, क्योंकि वो भूल नहीं पाते। तो बाबा के प्रति भी हमारा प्यार कैसा होना चाहिए। इतने लंबे समय से ब्रेकअप था हमारा बाबा से, और अब बाबा मिला है, भले ही हम भक्ति करते रहे लेकिन साक्षात तो भगवान नहीं मिले। अब बाबा साकार में हमें मिले हैं और हम खुद भी उनके प्यार को अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा तो प्यार का सागर है। भक्ति में गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और यहां तो क्या हो गया, बूंद के प्यासे हैं या सागर ही हमारा हो गया। तो बाबा का प्यार हमारी प्रॉपर्टी है इस वक्त। तो सागर को पाया है तो सागर के प्यार में समाये रहना है। इसको बाबा कहता है कि उसके लव में लीन रहो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। ऐसे नहीं कि सागर के किनारे खड़े होकर सागर को देखते रहो, ऐसे भी करते हैं ना लोग, सागर के किनारे जाते हैं तो सागर को देखते रहते हैं। तो प्यार के सागर को पाया, लेकिन अगर हमने सिर्फ जाना और माना और उसके प्यार को अनुभव नहीं किया तो हम क्या कहेंगे, हम सिर्फ किनारे पर खड़े हैं, सागर के किनारे पर आकर खड़े हो गए, उसके प्यार में समाने का अनुभव हमने नहीं किया। तो बाबा के लव में लीन स्थिति का अनुभव जो है वो हमें सहज ही मेहनत से छुड़ा देता है। बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। तो योग में अगर हमें मेहनत लगती है, इसका मतलब बाबा के स्नेह का अनुभव, बाबा के प्यार का वो अनुभव अभी हमें पूरा नहीं हुआ है। और हमारा स्नेह जो सर्व संबंधों का स्नेह है बाबा के साथ, वो एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि संगम पर अभी हमें भगवान मिला है तो आत्माओं के साथ संबंधों का अनुभव तो हम 84 जन्मों से कर रहे हैं, और वो संबंधों में रहकर हमें अनुभव भी कर लिया कि वो कितना सुख देने वाले हैं, पता है ना। हाँ, सभी का स्नेह कैसा होता है, स्वार्थ का स्नेह होता है। कितनी भी आत्मा आपको स्नेह करने वाली हो, लेकिन अगर वो सुख देती है तो दुख भी देती है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं के संबंधों में रहकर तो अनुभव कर लिया ना, तो अभी बाबा हमें खुद ऑफर कर रहे हैं कि मेरे से सर्व संबंधों में रहो। तो अभी तक तो हमारी दिल को बाबा कहते हैं ना बटी हुई थी अनेक संबंधों में, जिसमें एक गीत आता है दिल के टुकड़े हजार हुए, तो हजार टुकड़ों में दिल बटी हुई और बाबा ने आकर वो बटी हुई दिल को एक में जोड़ दिया। तो अभी एक बाबा ही मेरा है, बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा ही सब कुछ है तो फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? सब मेरा मेरा किस में समा गया? बहुत सारे मेरे मेरे हैं ना हमारे दुनिया में, मेरा घर, मेरी, मेरा पति, मेरे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, या जो भी मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, जो भी, जिसको भी हम मेरा मेरा कहते हैं, बाबा कहता है वो सब मेरे को किस में समा देना है? एक मेरे बाबा में समा देना है, यानी मेरा नहीं तेरा। तो फिर बुद्धि कहीं भी भटकेगी नहीं। जब हम मेरा मेरा में जाते हैं तो मोह में चले जाते हैं, इसलिए कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब मोह नष्ट हुआ तो ही स्मृति आई। जो हम देखते हैं गीता में भी अर्जुन का मिसाल आता है ना, जब उसने मेरा मेरा समझा, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे चाचा मामा काका गुरु मेरे सामने खड़े हैं, मैं कैसे युद्ध करूं, तो मेरे मेरे में था तो युद्ध करने में अपने आप को काबिल नहीं समझ रहा था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसको, वो तो यादगार है, जब उसको स्मृति दिलाई गई, पूरा ज्ञान मिला, तो अंतिम अध्याय में उसने कहा अब मेरा मोह नष्ट हुआ है। और जब मोह नष्ट हुआ तो स्मृति आ गई। तो ऐसे ही बाबा की स्मृति भी निरंतर, यानी बाबा की याद भी निरंतर हमें तब रहेगी जब सब मेरा को हम एक बाबा मेरा में समा देंगे। तो बाबा की याद अमृत वेले से ही हम करते हैं, है ना? वैसे मुरलियों में बाबा हमें कहते हैं बच्चे 8 घंटे का याद का चार्ट आपका जरूर होना चाहिए। 8 घंटे आप शरीर निर्वाह के लिए अपना कर्म करो और 8 घंटे नींद के लिए, बाबा कहते हैं कि 8 घंटे शरीर को आराम भी चाहिए। लेकिन वो 8 घंटे की बात नहीं, जैसे भक्ति में भी जो परम भक्त हुए, इस दुनिया में ऐसे भक्त हुए हैं जो सच्चे भक्त हुए, भगवान के परम भक्त हुए, उन्होंने श्वासों श्वास स्मरण किया कि मेरा एक श्वास भी भगवान की याद के बिना ना जाए। तो जब भक्तों ने भी ये लक्ष्य रखा जो भगवान को जानते भी नहीं, और किया भी उन्होंने, जिसको अजपा जाप कहते हैं ना, कई गुरु भी आजकल ऐसे मंत्र देते हैं कि जपते रहो इसको, जपते रहो। आप में से किसी ने मंत्र लिया कभी? गुरु को, गुरु से मंत्र लिया? कोई कोई है जिन्होंने पहले गुरु किए, तो वैसे ही कहते हैं जितना हो सके इसको जपते रहो, जपते रहो। तो फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? 8 घंटे नहीं, लेकिन हर श्वास, कोई भी श्वास बाबा की याद के बिना न जाए। हो सकती है ऐसी याद? सोचते हैं 1 घंटा योग में बैठते हैं, वही मुश्किल योग लगता है। तो कहाँ हर समय बाबा याद रह सकता है? चलो अमृत वेला कर लेते हैं, मुरली कर लेते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, सारा दिन तो प्रवृत्ति में रहते हैं, अपने बिजनेस में रहते हैं, गोरख धंधे में रहते हैं, जो भी हम करते हैं बुद्धि उसी में ही उलझी रहती है, कहाँ बाबा याद रहता है, भूल जाता है बाबा। फिर कई तो सोचते हैं उसका असर हमारी स्थिति पर भी आ जाता है, क्योंकि कई बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कई तरह तरह के लोग हमको मिलते हैं, और शाम तक ऐसी स्थिति होती है कि योग में बैठते हैं तो योग लगता ही नहीं, क्योंकि हमने उस लिंक को तोड़ दिया जो हमारी स्मृति का कनेक्शन बाबा के साथ निरंतर रहना चाहिए, वो हमने अटेंशन नहीं रखा। तो अमृत वेला भी हम कैसे करते हैं, क्योंकि शुरुआत हमारी होती है अमृत वेले से, उसकी तैयारी रात से ही होनी चाहिए। अभी देखो आप मधुबन में आए हैं, तो मधुबन में अमृत वेला सबका बहुत अच्छा होता है, होता है नहीं होता? हम देखते हैं मेजॉरिटी हॉल में आते हैं अमृत वेला करने और बहुत अच्छे अटेंशन से बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर संगठन का सहयोग है, हमको वातावरण है ऐसा मधुबन का, यहाँ पर हमारी दादियों की महारथियों की तपस्या के वाइब्रेशन है, तो मधुबन में हमें योग लगाना नहीं पड़ता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है हाँ, या योग सहज लग जाता है? जो सहज राजयोग है वो सहज कहाँ लगता है, क्या कहेंगे? लगता है मधुबन में? नहीं लगता है, सहज लग जाता है ना मधुबन में। तो यहाँ तो हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, पावरफुल होता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर का माहौल तो ऐसा नहीं है। तो घर में कैसे अमृत वेला करते हैं? उठ तो जाते हैं, क्योंकि नियम है, लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन अगर हमने पहले से रात को तैयारी नहीं की तो फिर क्या होगा, 10 मिनट तो हम उठकर बैठेंगे और फिर झूलने लग जाएंगे। तो ये राजयोग नहीं कर रहे, निद्रा योग कर रहे हैं, और उसकी अनुभूति भी बड़ी अच्छी होती है, कहते हैं बहुत अच्छी शांति का अनुभव हो रहा था। और बाबा तो कई बार हंसी में कहते हैं कईयों की ट्यून तक वतन तक जाती है। तो ऐसा अमृत वेला तो घर में नहीं करते हम, चलो अमृत वेला कर तो लिया ना, बाबा ने नियम दिया है उसको निभा तो लिया, नहीं, लेकिन विधि पूर्वक जो बाबा के स्नेह का, जैसे अभी हमने बात की बाबा का वो हम बच्चों के लिए विशेष समय है, और बाबा हमारे लिए वरदानी रूप में है, वरदानों का भंडारा हमारे लिए खोलते हैं, तो वो समय हम बाबा से अपने आप को सर्व खजानों से भरपूर कर लें, वो समय है वो अमृत वेले का समय। तो हम जब सुबह उठें तो अपने आप को फ्रेश करके, हमें पता है कि हम कैसे फ्रेश होके बैठ सकते हैं, फ्रेश होके रात से ही हम निश्चित कर लें कि यहाँ हम अमृत वेले बैठेंगे, जो भी हमारे घर का सबसे अच्छा शांत स्थान है वहाँ, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, और फिर चिंतन चलाएं। ऐसे नहीं एकदम शांति में बैठ गए, क्योंकि सो के उठते हैं तो मन शांत तो होता है और हम शांति में बैठ जाते हैं और इसीलिए फिर नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता कब 5 बज गए। लेकिन चिंतन चलाना है, स्मृति से ही स्थिति बनेगी ना? तो हमें पहले अपने अनादि स्वरूप का अनुभव, अशरीरी स्थिति बनाना सहज होता है ना अमृत वेले, तो हम परम धाम में अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करें, शिव बाबा निराकार है, मैं आत्मा भी बाबा के साथ अपने निराकारी, अपने संपूर्ण स्वरूप में परम धाम में हूँ, वो मेरी संपूर्ण पवित्र स्थिति है, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न स्थिति है। तो अच्छा पावरफुल अनुभव हम करेंगे और फिर बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करें। उस समय हम माता पिता की पालना, हम भगवान के प्यार में पल रहे हैं ना, अभी भगवान के प्यार के पात्र हैं, तो वो जो निस्वार्थ स्नेह बाबा हमें दे रहा है, ऐसा प्यार तो दुनिया में भी कोई हमें अभी दे नहीं सकता। तो वो अनुभव जो अमृत वेले हम कर सकते हैं, वो सारे दिन में शायद मेहनत से भी हमें ना हो, तो हम वो संबंधों का प्यार और विशेष मात पिता की वो पालना मुझे मिल रही है, बाबा से वो प्यार अनुभव हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर आपने अमृत वेले अपने आप को उस प्यार से भरपूर कर लिया तो सारा दिन किसी भी देहधारी के प्यार में आपकी बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि आपने स्वयं को उस प्यार से भरपूर कर लिया। जब आत्मा भरपूर होती है तो बुद्धि कहीं और नहीं जाती। जब हम अंदर से खुद खाली हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे औरों से मिले, ये मिले, ऐसा मिले, लेकिन जब बाबा से ही हमें मिल गया तो हम देने वाले बन जाते हैं, औरों को भी हम प्यार देने वाले बन जाते हैं। तो वो हम अनुभव करें बाबा से कि कैसे बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। अनुभव होता है सबको कि भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। भक्त तो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, लेकिन सचमुच भगवान की डायरेक्ट पालना क्या है वो हम बाबा के बच्चे अभी संगम युग पर अनुभव करते हैं। तो जिसको अनुभव है कि स्वयं भगवान की पालना में हम पल रहे हैं वो हाथ उठाएं। देखो सभी भगवान की पालना में पल रहे हैं, तो फिर अगर हम ऐसे क्या प्राप्ति बाबा हमें करा रहा है ना। बाबा को याद करने की विधि यही है ना कि बाबा के गुणों के गीत गाना है। क्या बाबा हमें दे रहा है, अनुभव करा रहा है, क्या हमें बना रहा है, बाबा से होने वाली प्राप्तियों के भी गीत हम गाएं तो मन खुशी में नाचना शुरू कर देगा। और जब मन खुश है तो नींद उड़ जाएगी। तो ऐसी स्मृति में हम अपने मन को लेकर आए और फिर अमृत वेले से ही हमारी सेवा शुरू हो जाए। याद और सेवा साथ साथ चलेगा ना, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। याद में भी सेवा समाई हुई है, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तब हमारी स्मृति और वृत्ति पावरफुल हो जाती है, और हमारी स्मृति वृत्ति पावरफुल है तो फिर हम वायुमंडल भी, वायुमंडल में कैसे वाइब्रेशन फैलाते हैं वही पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते हैं, शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो वो भी सेवा है। याद में बैठकर जो हम तपस्या करते हैं, सारे विश्व तक मनसा सेवा हम कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए हम विश्व की आत्माओं को सकाश दें बाबा से शक्ति लेकर के, तो अलग अलग जो योग की स्थितियां हैं, बीज रूप स्थिति का अनुभव जो कहा, निराकारी स्थिति का अनुभव माना, बीज रूप स्थिति का अनुभव जो योग की सबसे पावरफुल स्थिति है कि मैं आत्मा बिंदु रूप, शिव बाबा भी बिंदु हैं और मैं बिंदु बिंदु बाप को याद कर रही हूं, तो बाबा के वो सब गुण अपने में समाने का, शक्तियां अपने में समाने का अनुभव करें। ये बीज रूप स्थिति का अनुभव अमृत वेले हम ये सबसे अच्छा कर सकते हैं। फिर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, यानी अपने डबल लाइट स्वरूप, मैं आत्मा भी लाइट और ये शरीर भी लाइट के कार्ब में है, प्रकाश की काया है जिसके द्वारा मैं विश्व में कहीं भी उड़कर जा सकती हूँ, किसी भी आत्माओं की किसी भी स्थान पर वाइब्रेशन फैलाने की सेवा या किसी को भी शक्ति देने की सेवा, उसको उमंग उत्साह में लाने की सेवा, ये सेवा मैं आत्मा कर सकती हूँ। तो ये सेवा भी हम अमृत वेले से ही शुरू कर दें। तो कब एक घंटा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम स्वयं को बिल्कुल बाबा के प्यार से, बाबा के शक्तियों से, बाबा के गुणों से स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। फिर मुरली सुनते हैं हम, तो मुरली सुनते हुए शिव बाबा से हम, वो बाबा हमारा टीचर भी है। तीन मुख्य संबंध है ना, मात पिता शिक्षक और सद्गुरु। तो शिक्षक के रूप में बाबा रोज हमें पढ़ाते हैं, तो अगर मुरली हम रोज सुन रहे हैं और एकाग्रता से सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, निमित कोई भी आत्मा मुरली सुना रही है ना, हम सेंटर पर सुनते हैं, कोई भी बहन निमित होती है जो मुरली सुना रही होती, कहीं कहीं गीता पाठशाला पर कोई माता भी मुरली सुना रही होती है, जो भी निमित आत्मा है, लेकिन हम मुरली किसकी सुन रहे हैं? बाबा मुरली मुझे सुना रहा है, तो मैं बाबा की वही कल्प पहले वाली गोपिका हूं। तो अगर हम उस एकाग्रता से मुरली सुनते हैं, वो भी याद है, लेकिन मुरली सुन रहे हैं, बैठे हैं शरीर से मुरली सुनने, फिर चाहे कहीं भी सुन रहे हैं, सेंटर पे सुन रहे हैं या घर पे सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि भटक रही है, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, पर चिंतन चल रहा है मन में, मुरली में बाबा ने क्या कहा पता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में एक ही बात चल सकती है, या तो आप मुरली सुनेंगे या दूसरा चिंतन चलेगा, तो वो सिर्फ नियम निभाना है, तो वो याद भी नहीं है। और फिर बाबा हमें कहता है कि सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समाना है, विचार सागर मंथन करो, जब भी आपको समय मिले उसको मनन करो, याद करो बाबा ने आज मुरली में क्या कहा। तो जितना हम अपनी पढ़ाई को याद करते हैं, उतना क्या होता है, जैसे स्टूडेंट अपने पढ़ाई का जब रिवीजन करता है तो उसको अपना टीचर याद आता है कि टीचर ने मुझे ये पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, तो सारा समय बुद्धि में क्या है, पढ़ाई का रिवीजन करते वक्त टीचर में बुद्धि लगी हुई है। ऐसे ही जब हम मुरली का रिवीजन कर रहे हैं, मुरली का मनन कर रहे हैं, तो बुद्धि में कौन आएगा, बाबा याद आएगा, तो बुद्धि अपने आप बाबा से लग गई, तो वो भी हमारी याद के चार्ट में, याद की सब्जेक्ट में आ गया कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। तो ये तो सहज हो गया ना, अमृत वेला मुरली, ये चार घंटे तो हमारे नेचुरल योग के चार्ट में आ जाएंगे अगर हम उतना अटेंशन देंगे। फिर जब हम अपने कर्म शुरू करते हैं तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कर्म योगी बनकर कर्म करो, कर्म और योग को अलग अलग नहीं करो, कि योग करने का टाइम अलग है, जब बैठेंगे तभी योग होगा, हमारा राजयोग तो ऐसा नहीं है ना। राजयोग में हमने शुरू से क्या सीखा है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, हर कर्म करते हम बाबा को याद करें, तो कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि सारा समय कामों में बिजी नहीं होती, चलो कुछ समय बिजी भी होती है, हमें ध्यान देना होता है, लेकिन बीच बीच में हमारी बुद्धि फ्री भी होती है, फिर हम जो सर्व संबंध है वो भी अनुभव करते रहें बीच बीच में बाबा के साथ, जैसे सारे दिन में बाबा साथी है मेरा, दोस्त है मेरा, क्योंकि काम जो हम करते हैं तो उस काम के लिए हमारे कोई ना कोई साथी होते हैं, तो हम बाबा को अपना साथी बना लें, तो अगर मेरा साथी सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, तो फिर मुझे कितनी मदद हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए बाबा कहता है कम समय में आप ज्यादा सफलता प्राप्त करोगे, अगर आप बाबा को साथी बना करके कर्म करो। कई बार हम सोचते हैं तो मेरा लौकिक कार्य है ना, अब लौकिक कार्य में तो हम बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, अगर हमें निरंतर याद बनाना है तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, लौकिक को लौकिक नहीं समझो, लौकिक को हमेशा समझो कि ये मेरे विश्व कल्याण के अर्थ बाबा ने साधन दिया है, ये भी मेरा सेवा का साधन है, सेवा में कहा ना, जैसे योग के साथ सेवा भी है, तो अगर हमने ऐसे समझकर अपना लौकिक कार्य किया, जो भी कर रहे हैं हम, चाहे घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ऐसे समझा कि मैं निमित्त हूं और बाबा मेरे से करा रहा है, बाबा करण करावनहार है, बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त ही ये कार्य दिया है ना, भले है लौकिक कार्य लेकिन परिवर्तन करना है उसको, अलौकिक में परिवर्तन, उस स्मृति को अलौकिक बनाएंगे तो सचमुच वो सेवा का साधन बन जाएगा। यानी अगर मैंने ये स्मृति से कर्म किया तो बाबा कहते हैं भले आप ज्ञान नहीं दे रहे किसी को, लेकिन आपकी दृष्टि सेवा करेगी, आपका मुख सेवा करेगा, आपका व्यवहार सेवा करेगा, क्योंकि अगर बाबा हमें याद हैं तो हमारी दृष्टि वृत्ति व्यवहार वाणी कैसे होंगे, कैसे होंगे, तो सेवा करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारे चलन के द्वारा सेवा होगी, हमारे वाइब्रेशन के द्वारा सेवा होगी, वो जो हमारे आसपास संबंध संपर्क में आएंगे वो महसूस करेंगे इस बात को कि ये कोई अलौकिक लोग हैं, ये तो न्यारे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, तो उन आत्माओं को ऐसे हम बाबा के समीप ला सकेंगे तो सेवा के निमित्त बन जाएंगे ना, तो उसमें हमारी सेवा भी हो जाएगी, याद तो है ही है लेकिन साथ में हम सेवा के निमित्त भी बन जाएंगे। फिर माताएं जैसे घर के काम करते हैं, आप खाना बनाते हो तो अलग अलग स्मृति का अटेंशन रखो, आप खाना बनाते समय आप समझो है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और वो शांति से खाना बनाएंगे तो वो वाइब्रेशंस खाने में भर जाएंगे, वो शक्ति उसमें आ जाएगी, बाबा की याद में हम खाना बनाएं, हमें पता है कि हमें बाबा को भोग लगाना है। फिर अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो आप समझो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं ये कार्य कर रही हूँ, तो जो भी बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई अगर उन स्मृतियों में हम कार्य कर रहे हैं वो भी हमारा योग है। सफाई कर रहे हैं तो समझो मैं बाबा, मैं सुखदाता बाप की बच्ची, सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ, पानी पीते हुए मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, हर एक कर्म करते हुए अपनी एक स्मृति बना लो। और अगर हम थोड़ा समय हमें अटेंशन देना पड़ता है, थोड़ा समय वो अभ्यास हमें करना पड़ता है, कहते कोई भी आदत हमें बनानी है तो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है, वो थोड़ा हम करेंगे कुछ दिन तो हमारा वो फिर अपने आप ही नेचुरल हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि याद हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, ऐसा हमें बाबा को याद करना है। इसीलिए जो बात सहज होती है ना वो निरंतर हो सकती है, अगर वो सहज नहीं है, हम बाबा हर सहज राजयोग क्यों कहते हैं, सहज राजयोग कहते हैं ना, तो सहज क्यों है, बाबा ने हमें ऐसी विधि दी है कि बस याद करना है, जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है, तो जहाँ स्नेह संबंध प्राप्ति है वहाँ सहज याद है, और बाबा से हमें ये सब कुछ है, स्नेह भी है, संबंध भी है, प्राप्ति भी है, और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, कोई एक थोड़े समय की प्राप्ति नहीं है, कोई छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है, लेकिन बेहद की प्राप्ति बाबा हमें कराते हैं। तो जो सहज है वो निरंतर हो सकता है, मुश्किल काम कभी भी निरंतर नहीं हो सकता, वो थोड़ा समय हम करेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे हमारी याद जो है वो हम नेचुरल बनाएं कि कोई ना कोई संबंध या कोई ना कोई स्मृति बाबा से हम अनुभव करते रहें। ऐसे ही रात को सोने से पहले भी बाबा हमेशा कहते हैं बाबा की याद में सोना है, तो योग निद्रा हो जाएगी अगर हम बाबा की याद में सोएंगे। अब सोने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, हम कोई बात को मन में रख के सो रहे हैं, होता ही है ना, सारे दिन में कई बातें होती हैं। अब सोते समय बाबा याद नहीं आ रहा, वो व्यक्ति, वो समस्या या कोई भी जो भी बातें, परिस्थिति हुई, वो मेरे बुद्धि में चल रही है, कोई चिंता हो रही है मुझे और उसमें नींद आ गई और सो गए, तो सुबह अमृत वेले योग कैसे करेंगे? बाबा से गुड मॉर्निंग करने की बजाय क्या याद आएगा? जो रात को चिंतन चल रहा, जिसमें सो गए, जिस स्मृति में, वही स्मृति पहले इमर्ज होने वाली है। तो अमृत वेले भी हम उतना अच्छा फिर बाबा से अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा अमृत वेला भी पावरफुल तब होगा जब रात को हम बाबा की याद में सो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है सब चिंता बाबा को दे दो और निश्चिंत होकर सो जाओ। बाबा को अपना चार्ट, सारे दिन का चार्ट जो भी है, सच सच सुना करके बुद्धि को खाली कर दो, हल्के होकर के हमें सोना है, तो वो भी याद की विधि है। तो सारे दिन अगर इस विधि से हम याद करते हैं तो हम सहज और स्वतः ही निरंतर योगी अपने को अनुभव करेंगे। दादी प्रकाश मणि जी के साथ हम रहे काफी सालों तक, तो एक बार क्योंकि हम देखते थे दादी सारा दिन सेवा में बिजी रहते हैं, अब इतना बड़ा यज्ञ है, इतने सब प्रोग्राम चलते हैं, तो दादी बिजी रहते थे और हम दादी जी के साथ होते थे, तो हम देखते थे कि दादी तो कभी बैठकर योग करते ही नहीं है। तो ऐसे ही एक बार मैंने पूछा दादी को कि दादी आप योग कब करते हैं, तो दादी मेरी तरफ देखने लगी और दादी ने मुझे कहा कि मैं बाबा को भूली कब हूं जो मुझे योग करना है। तो हमें ऐसा फील होना चाहिए कि बाबा हमें कभी भूला ही नहीं है, जो हमें बाबा को याद करना है। तो ये प्रश्न ही मन में ना आए कि जब योग करते हैं तो योग लगता ही नहीं, बाबा की तरफ बुद्धि जाती नहीं, और बातें ही बुद्धि में चलती रहती हैं। तो यहां पर हमेशा बाबा कहता है अगर मानो कभी ऐसा होता भी है, कभी बुद्धि उलझन में आ भी जाती है, तो फिर मधुबन में आ जाओ। जैसे मधुबन में सहज योग लग जाता है ना, तो उस समय मन को मधुबन में ले आओ, और मधुबन में आएंगे तो मन और बातों से निकलकर बाबा के अनुभव में आ जाएगा। फिर अगर साकार मिलन आपने बाबा से मनाया है तो वो याद करो, उस अनुभव को याद करो। तो साकार मिलन की बातें याद करेंगे, मन जरूरी नहीं है कि हमें वो बिंदु रूप में ही टिकना है, मैं आत्मा बिंदु हूँ, शिव बाबा बिंदु है ना, हमारी योग की तो अलग अलग स्थितियां हैं। तो बाबा से रू रिहान का अनुभव करो, अपने दिल की बातें करो, तो फिर सहज रीति से बाबा को याद करने लग जाओ, तो अपने आप मन, या नहीं तो ज्ञान के मनन चिंतन में ले जाओ मन को। अगर वैसे योग नहीं लग रहा है तो जैसे ही ज्ञान के शुद्ध चिंतन में जाएंगे अपने आप मन में समर्थि आ जाएगी, और मन धीरे धीरे जो एकाग्रता आप चाहते हो वो एकाग्रता के अनुभव में आ जाएगा। तो जब हम कर्म योग में होते हैं तब हमारा योग उतना पावरफुल योग नहीं होता है, लेकिन जब हम बैठकर योग करते हैं, जैसे भट्टी में जब हम योग करते हैं, लंबे समय तक बैठकर हम एकाग्रता से पावरफुल योग करते हैं, वो हमारा विकर्म विनाश करने वाला योग, जिसको बाबा योग अग्नि कहते हैं, ज्वालामुखी योग की स्थिति कहते हैं, तो वो योग की स्थिति भी हमें अनुभव करनी है। हर दिन हम ये लक्ष्य रखें कि ऐसा पावरफुल योग भी हमें कुछ समय अवश्य अनुभव करना है। और निरंतर सेवाधारी के लिए बाबा कहते हैं कि हम मनसा वाचा कर्मणा, तीन तरह से सेवा तो करते हैं, लेकिन चार प्रकार की जो सेवा है वो चारों प्रकार की सेवा में उसमें है स्व सेवा, माना अपनी स्वयं की सेवा, स्वयं को संपन्न बनाने की सेवा, जो हमारे चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें हम खुद को पास विद ऑनर बनाएं। चारों सब्जेक्ट में हमें पास होना है ना, अगर हम एक सब्जेक्ट में पास हों और बाकी तीन सब्जेक्ट में कमजोर रह जाएं, जैसे और स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं, अगर वो एक सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स आते हैं तो फर्क पड़ जाता है। तो यहां भी हमारे चारों ही सब्जेक्ट में नंबर वन मार्क्स आए, ये हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए भी हम पुरुषार्थ तो करते हैं ना। तो हमारे चारों सब्जेक्ट के लिए अपने आप को संपूर्ण बनाना, ये स्व की सेवा है। फिर दूसरी सेवा है, हम विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, तो विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए हम समय निकालते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, हम वाणी से संदेश देते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम रचते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, मेला करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेक्चर्स करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया, माना मीडिया भी एक माध्यम है, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, अनेक साधनों के द्वारा हम आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं। तो ये हर एक अपनी अपनी रीति से जो जितना योग्य है, यथा योग्य यथा शक्ति बाबा कहता है, हम ये विश्व की आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि विश्व की कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। सबको बाबा कहता है ना कि अपने आसपास चलो, आपको लगता है कि हम भाषण नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने जो मित्र संबंधी हैं उनको तो ये संदेश दो कि भगवान आया है, जो हमें प्राप्ति हुई वो अनुभव सुनाकर उनकी सेवा करो, ऐसे उनको उमंग उत्साह में लाओ ताकि वो आत्माएं आपको उलाहना ना दे कि भगवान आपको मिला और आपने हमें बताया ही नहीं। तो ये सेवा तो कम से कम हम कर सकते हैं, अनुभव सुनाने की सेवा तो कोई भी कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि हम बाबा के बने और हमें कोई अनुभव ना हो, ऐसा हो सकता है? सभी को कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई है तभी हम बाबा के बने। बाबा कहता है बाबा का प्यार ऐसा है, है ना, अब मैं अगर पूछूं कि क्या आपको बाबा का प्यार अनुभव होता है, तो लास्ट नंबर भी कहेगा, बाबा कहता है ना लास्ट नंबर भी प्यार में पास है, कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है, यानी मेरा बाबा बोलने में सब नंबर वन है। तो प्यार का अनुभव तो सभी को है, सभी को हाथ उठाएं जो समझते हैं, देखो सभी को है। तो वो प्यार का जो अनुभव है वो हमसे इस पुरानी दुनिया की कई बातों को सहज त्याग करवा देता है। प्यार में त्याग करना हमें मुश्किल नहीं लगता है, लगता है? जिसको दुनिया वाले मुश्किल समझते हैं, हमारे लिए वो कितना आसान है। आज की दुनिया में अमृत वेले उठना लोगों के लिए क्या है, आसान है मुश्किल है? लोग रात के 2 बजे सोते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं, ऐसे ही उठते हैं ना, और हमारी दिनचर्या देख के लोगों को लगता है ये क्या है, हाँ सुबह सुबह 4 बजे उठ के करते क्या है ये लोग, और हमें क्या लगता है 4 बजे उठ के, हाँ कितना भगवान से हम मिलन मना रहे हैं, हमारे जैसा भाग्यशाली कौन, किसको इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। तो इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं हम। फिर लोग समझते हैं ये खाना पीना शुद्ध खाते हैं, सात्विक खाते हैं, और उन लोगों को तो बाहर बाजार में जाकर के ऑर्डर करके खाने में मजा आता है, और हमें कौन सा भोजन अच्छा लगता है? बाबा की याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन उससे अच्छा भोजन हमारे लिए कोई भी नहीं। मुश्किल है या सहज है, ये अभी भी इच्छा होती है बाजार में जाके कहीं होटल में जाकर खा लें थोड़ा, हाँ, या शादियों में इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन होता है, वो भी कभी कभी तो खा सकते हैं, खा सकते नहीं खा सकते। तो हमारे लिए क्यों सहज हो गई ये सब धारणाएं? क्योंकि बाबा के प्यार का अनुभव किया, उस प्यार के अनुभव ने इन सब बातों से सहज, पुरानी दुनिया के जो शूद्र जीवन के हमारी संस्कार थे उनका त्याग करवा दिया, और हमें महसूस भी नहीं हुआ कि हमने कुछ त्याग किया, लेकिन हमें लगा उस त्याग में ही हमें भाग्य की प्राप्ति हो गई, जो पाना था वो पा लिया, भगवान मिल गया, खुद ईश्वर मिल गया, उसके आगे ये सब छोटी छोटी बातें क्या हैं। तो इसीलिए कहा कि ये विश्व की सेवा हम बाबा के बच्चे सहज करते हैं। फिर तीसरी सेवा है यज्ञ की सेवा, जहां भी सेंटर पर हम हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं, तो हम सबको जो भी अपनी अपनी विशेषता के प्रमाण ड्यूटीज मिलती हैं वो सब हम करते हैं। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, उस अनुसार वो सहयोग करते हैं, क्योंकि हर एक की उंगली लगती है तभी वो कार्य सफल होता है। सेवा बिना संगठन के नहीं होती, बड़े बड़े कार्य में सबका सहयोग होता ही है। यहाँ मधुबन में भी बाबा मिलन के ये कार्यक्रम चलते हैं, तो पूरा जोन सेवा में हाजिर होता है। तो ये बाबा के महायज्ञ की सेवा, और हम कितना देही अभिमानी होकर करते हैं, जो बाबा के यज्ञ में हमें सेवा मिले, भले छोटी छोटी सेवाएं होती हैं कई बार, हाँ, भले ही हम लौकिक में बहुत अच्छे ओहदे पर काम करते हैं, लेकिन यज्ञ में आकर सेवा करते हैं, जैसे वहां दिखाते ना गुरुद्वारे में, बड़े बड़े लोग भी क्या वो जूते के स्टैंड में जूते संभालने की भी सेवा करते हैं। तो भगवान के घर में जो सेवा हमें मिलती है वो निमित्त निर्माण भाव से हम यज्ञ सेवा करते हैं, धन से भी हम सेवा करते हैं। बाबा के यज्ञ में यथा योग्य यथा शक्ति अपना धन लगाते हैं, और हमें पता है कि ये देना नहीं है लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए लेना है। बाबा हमें पदम गुना इससे देने वाले हैं, ये हमारी लाइफ टाइम इंश्योरेंस है, यानी एक बार हम सेवा करते हैं और पूरे कल्प का हम भाग्य बनाते हैं। कितना समय हम सेवा करते हैं, कितने साल हमें मिलते हैं, संगम का समय कितना छोटा है और उसका मेवा कितना बड़ा है। पूरे कल्प की प्राप्ति हम एक थोड़े समय में सेवा करके हम करते हैं, तो वो सेवा का भी जो त्याग है वो हमें त्याग नहीं लगता, लेकिन वो हमें पद्मा पदम भाग्यवान बनाने वाली है। ऐसे ही हम चौथे प्रकार की सेवा करते हैं, मनसा सेवा। तो मनसा सेवा शुभ भावना शुभ कामना की सेवा है। मनसा सेवा अपनी पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन बनाने की सेवा है। तो ये सेवा हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाबा कहता है आपकी मनसा लाइट हाउस माइट हाउस की तरह होनी चाहिए। आपकी मनसा जो है वो व्यर्थ से मुक्त होनी चाहिए, सदा शुद्ध और निस्वार्थ होनी चाहिए, और मन मना भव यानी बाबा से हमारा कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो जिस आत्मा को जो हम सहयोग मनसा से देना चाहते हैं वो हम एक्यूरेट दे पाएंगे। इसको बाबा कहता है वायरलेस सेट है हमारा जो मनसा है, और वो कहीं भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आजकल हमारे मोबाइल फोन वायरलेस सेट है। तो ये सेवा अगर हम चारों प्रकार की सेवा करते हैं तो अपने आप ही हम निरंतर सेवाधारी हो गए, यानी जब जो सेवा हमें मिलती है, अगर नहीं मिलती है, क्योंकि जो विश्व सेवा है और यज्ञ सेवा है वो तो चांस प्रमाण है, चांस होगा, कोई प्रोग्राम बनेगा तो हम करेंगे, लेकिन जो स्व सेवा और मनसा सेवा है वो हम हमेशा कर सकते हैं। तो जब भी हम फ्री हैं, अगर मैं अपने संकल्प को सदा कल्याणकारी शुभ भावना वाला रखती हूँ हर आत्मा के प्रति, तो वो भी सेवा है। तो हम हमेशा ये अटेंशन रखें कि मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई प्रकार का व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं चले, तो हम सेवा पर हैं। तो अपने संकल्प से सेवा, अपनी दृष्टि से सेवा, अपनी वाणी से सेवा, अपनी वृत्ति से सेवा, अपने चेहरे से सेवा, अपने चलन से सेवा। तो जब ये सूक्ष्म सेवा भी हम करते रहते हैं तो हम निरंतर सेवाधारी में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे हमें चारों प्रकार की सेवा करनी चाहिए, पर अगर नहीं कर पाते, मानो किसी को शरीर के कारण स्थूल काम नहीं होता है, अब उम्र हो जाती है तो सोचते हैं अब हम शरीर से तो सेवा कर नहीं सकते, या फिर इतने बिजी हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता कि हम सेवा कर पाए, कोई ऐसी सेवा में सहयोग दें। कई सोचते हैं हमारे पास तो इतना धन ही नहीं है जो हम धन से कोई सहयोग करें। माना हर एक की अपनी कोई ना कोई कमी होती है या मजबूरी होती है। तो बाबा कहता है कोई बात नहीं, आप कैसे सेवा करो, स्व की सेवा तो हमेशा कर ही सकते हो, तो स्व की सेवा करते रहो, मनसा को सदा पावरफुल रखो, मनसा को सदा शुद्ध रखो, बाबा से योग लगाते हुए वो सेवा करेंगे तो भी आप निरंतर सेवाधारी में आ जाएंगे। तो कोई ना कोई प्रकार का दान, सेवा करना माना देना, दाता बनना, विधाता बनना, तो मुझे देना है ये सदा मेरा लक्ष्य रहे। तो अगर हम इस लक्ष्य से दो प्रकार की भी सेवा करते हैं तो भी निरंतर सेवा में हमारे मार्क्स आते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ऐसे बाबा मुरलियों में हमें कहते हैं। तो सभी प्रकार की सेवा का लक्ष्य रखते हुए जो भी हमारी तन मन धन संबंध संपर्क की सेवा है, वो सेवा में अगर हम हाजिर हैं तो बाबा कहता है आपको जो दुआएं मिलती हैं, बाबा की दुआएं और आत्माओं की दुआएं, ये दुआएं आपको आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाती हैं, ये दुआएं आपको उड़ती कला का अनुभव कराती हैं। पर याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि सेवा में याद भूल जाए तो सेवा में विघ्न आ जाएगा, सेवा में कहीं ना कहीं मैंपन आ जाएगा। तो सेवा जितना निमित्त होकर के बाबा की याद में, जितना निमित्त निर्माण है, यानी जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ये लक्ष्य रखा कि मैं नहीं बाबा करता है, हमने दादियों को देखा, दादियों ने भी हमेशा यही लक्ष्य रखा, यही, दादी तो कभी मैं शब्द बोलते ही नहीं थे, दादी तो कहते थे दादी कहती है, दादी करती है, माना दादी ही बोलते थे, मैं शब्द तो जैसे दादी ने बिल्कुल गुम कर दिया था। तो कभी भी जो भी हम दूसरों के निमित्त कर रहे हैं, मैं कर रही हूं, ये मैंपन नहीं आना चाहिए, और ये भी नहीं अपेक्षा रखनी चाहिए हम इतना करते हैं, ये भी तो इतना करें, ये भी तो थोड़ा करें, ये भी तो कुछ करें, नहीं, मुझे करना है, मुझे बाबा के समान दाता बनना है। तो जितना हम ये याद और सेवा का बैलेंस, जो निरंतर याद और निरंतर सेवा बाबा कहते हैं, अगर आप ये बैलेंस बना करके चलेंगे तो संगम युग आपको ऐसे लगेगा कि आप सहज वरदानों में, बाबा के वरदानों में पल रहे हैं, बाबा की छत्र छाया में चल रहे हैं, आपको कहीं भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, बहुत सुंदर प्रेरणाएं हमें दी कि सेवा का आधार पहले याद है, जब हमारी याद अभूल बन जाएगी, हम बाबा को भूलेंगे ही नहीं, तो स्थिति से सेवा होगी। और हर प्रकार की सेवा के लिए आपने प्रेरणा दी, और मेन प्रेरणा दी कि मनसा सेवा हम जरूर करें। उसके लिए अपने मन को क्लीन क्लियर रखें, दुआओं का खाता जमा करें और उड़ती कला का अनुभव करें। तो आप सबकी तरफ से एक बार पुनः हम दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।